ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद भगवद गीता यथारूप का अध्याय आठवा और श्लोक संख्या 18 और 19। भगवत प्राप्ति के साधन में भगवान का सर्वप्रथम जानने की आवश्यकता होती है। Should I speak in English or Hindi?
Huh? I have an English one as well in my car.
No, I mean, you want me to speak in English or Hindi?
Do it in your place and then someone else.
If all can understand English, then you speak in
English. English, everybody knows. Mataji, Bhangyututu, Bharuch Karu. All right. I got an English one. All right, Hindi one. Lord Shri Krishna is the final goal to be achieved because He is our origin. So we may talk in different tongues that we approach to the Supreme as our origin through different paths. But we also appear from time to time. Means, manifestation and dissolution, these two things are going on simultaneously. So, at which juncture we are supposed to achieve Him? While manifested, or when we'll become unmanifested?
When manifested.
गुजराती में कहूं थोड़ो हिंदी में कहूं भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का उत्तम लक्ष्य है ना। लेकिन एक जिंदगी में सही नहीं होता तो हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। यानी कि अभी हम व्यक्ति के रूप में हैं, उपस्थित हैं, मरने के बाद पता नहीं अव्यक्त हो जाएंगे। तो भगवत प्राप्ति कब होती है? गुरुदास कहते हैं कि जिंदे जिंदे ही होनी चाहिए। वाइल वी आर एग्जिस्टिंग, वाइल वी आर मैनिफेस्टेड, वी शुड अचीव द सुप्रीम अबोड। राइट। So this particular verse is telling about those elevated soul who want to get out from this material world. Krishna says, "Mamupetyatu punarjanma dukkhalay mashashvatam napnuvanti mahatmana sansiddhim paramangata." मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यानी कि वापस आने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन हम मनुष्य इस भौतिक शरीर में होकर हमें काफी परेशानी होती है, तो बारंबार जन्म लेते, पुनः जन्म लेना चालू रखते हैं, बारंबार जन्म लेते हैं, बारंबार मरते हैं और फिर से पैदा हो जाते हैं। तो ये सारा जो संसार का ये आने जाने का है, ज गत, ज यानी जन्म होना, गत यानी चले जाना, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं। यहां तो जबरदस्ती पड़ती है, जबरदस्ती से आना पड़ता है, जबरदस्ती से चले जाना पड़ता है। वी आर फोर्स टू बी बोर्न एंड फोर्स टू डाई। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, जन्म ध्रुवम मृतस्य च, कृष्णा सेज इन सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। देन ध्रुवम मीन्स निश्चित, डेफिनेट, इट इज ऑलरेडी सर्टन कि दोज हु आर बोर्न, डेथ इज सर्टन, एंड फॉर दैट विच इज बोर्न अगेन, बिकॉज द कंपोजिशन of the body which is born again, not the soul, because composition of the body is merging into its own earth, water, fire, air, ether. So janma dhruvam ritasya cha, the one that has died, it is sure to come arise again, right? It will be rising up. Sharir marta hai, atma nahi marti, sahi na? To jab sharir marta hai to sharir punah peda hoga, यानी कि जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जो मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। यानी कि शरीर आता जाता है, आत्मा आती जाती नहीं है, वो तो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। लेकिन भगवान कहते कि उसका उद्धार करो, उसको मेरे पास पहुंचाने की आवश्यकता है। शरीर थोड़ा आता है मेरे पास, आत्मा मेरा अंश है, वो आएगा। तब भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म विद्यते। दोबारा कहते हैं कि देखो, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी नहीं जन्म लेता, यानी झूठा जन्म नहीं लेता, झूठा शरीर लेकर नहीं आता। आध्यात्मिक शरीर लेकर भगवान का काम करने के लिए एक विशुद्ध भक्त के रूप में आप आ सकता है, लेकिन जबरदस्ती से उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार मुझे पाकर ये पुनर्जन्म मिट जाते हैं। भगवत प्राप्ति का विषय जो है तो उसके लिए बहुत सारे लोग अन्य अन्य प्रकार की कोशिश करते रहते हैं। एवरी वन ट्राइज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है। सम मे नो, सम मे नॉट नो, सम मे बी एटलीस्ट प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल, सम मे जंप, देर आर सो मेनी वेज। ये यथा माम प्रपद्यंते ताम्स तथैव उपजाम्यहम्। इट इज इन द डिग्री ऑफ अवर सरेंडर, you know, he reciprocates accordingly. So if we are putting the full surrender, atmanivedanam, then he is easily available, that is also for sure. Otherwise by our material calculation, it is a long way to go. In our material calculation, it's a long way to go, because the time is a great factor in our estimation. So Krishna gives the calculation of time according to the kalpa, means Brahma's 12 hours or a day. So manaviya ganana ke अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और उसकी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अब यानी कि जबरदस्ती करने वाला ये ब्रह्मा का दिन रात चलता है। ब्रह्मा के 12 घंटे में, इन 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, 1000 साइकल्स ऑफ 4 युगर्स आर कमिंग। एक महायुग पर वो 4 युगों को मिलाकर एक होता है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली। हम तो कली में हैं अभी, सही ना? कौन कहता है सत्ययुग है हमारे यहाँ? कोई बेवकूफ होगा? तो ये कलयुग है। तो कलयुग 4,32,000 साल का बताया, उसे दो गुना द्वापर होकर, कली से 3 गुना त्रेता होता है और कली से 4 गुना सत्ययुग होता है। और ऐसे 1,000 बार जब चक्कर लगता है चार युगों का, तब ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत और ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहो रात्र विदो जनाः। तो ये जो गणना है, तो हमारे 100 साल के अनुसार देखो कि ये चारे युग मिलाकर कितना होता है कि 17,28,000 साल का है वो सतयुग का बताया है, 12,96,000 का त्रेता होता है, द्वापर में 8,64,000 साल का और कलयुग में 4,32,000। तो यदि ब्रह्मा के 100 साल 12 घंटे से 2 गुना तो 24 घंटे हुए, 24 घंटे से 3 गुना करो तो 1 महीना हुआ, 1 महीने से 12 तो 1 साल हुआ, ऐसे 100 साल। तो कुल मिलाकर ब्रह्मा की आयुष्य यदि उनके हिसाब से 100 साल की हो तो हमारे हमारे हिसाब से कितना होता है, हैं? कितना है? हमारी तो गिनती भी चली गई।
₹31,904,000,000,000
सही। और हमारे 100 साल में हम कितनी बार चक्कर काटेंगे ब्रह्मा जी के? रात्रि आती है जो 12 घंटे के बाद, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बीच में ये काल का खप्पर हमें ले लेता है, फिर से डार देता है। तो भगवान क्या कहते हैं देखो तो सही, कि जब भी ब्रह्मा को भी मरना होता है, ब्रह्मा के 100 साल के बाद वो चले जाएंगे, सारी सृष्टि नहीं, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड खत्म हो सकता है, वो चले जाएंगे, फिर से प्रकट करना है तब ब्रह्मा को फिर पैदा होना पड़ेगा और वो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से फिर से कमल प्रकटेगा और बैठेंगे तब, और जब पैदा होते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया था। तो भगवान को कहना पड़ता है तप तप तप, 3 बार बोलना पड़ता है तो ब्रह्मा जी में कुछ अध्यात्म का चमत्कार शुरू होता है, वो फिर से तप करने लगते हैं, फिर से सारी बुद्धि प्राप्त करते हैं कि कैसे पैदा करना है, नहीं तो सभी अंधकार में अज्ञानता में ही पैदा होते हैं। एवरीवन इज फोर्स्ड टू फॉरगेट, एंड हाउ मेनी टाइम्स परपेचुअली वी हैव बीन कीपिंग ऑन फॉरगेटिंग, वी आर फोर्स्ड बिकॉज इन 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा हाउ मेनी टाइम्स वी मस्ट हैव डाइड, यू नो। सो भगवान क्या कहते हैं कि अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त की अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। द मैनिफेस्टेशन एंड नॉन मैनिफेस्टेशन इज हैपनिंग ड्यूरिंग द ब्रह्मास डे एंड नाइट। We've been re-manifested. What? The conditioned souls, which are not liberated, they are, due to their ignorance, are attached to the material conception of life. So they are perpetually forced to take birth and death. So manifestation and unmanifestation of the body, the living entities will be there. So when Brahma wakes up, the manifestation begins. When Brahma goes to sleep, we are forced to be remaining in unmanifested state. Right? So Krishna is telling that bhuta gramam sa evayam bhutva bhutva praliyate ratrya game avashah partha prabhavatya haragame. So it is forced by the what we call mother nature, or the one which is controlled by the time. Time, I am the destroyer of all the dynasties. Right? So, what is this manifestation and non-manifestation? When the body is not there, means the material body is not there, we are unmanifested. Means we cannot understand what is our true nature. People misunderstand this part, that because we are unmanifested, we are nirguna, niraka. We are nirguna and nirakar because we are forced to become unmanifested. But forced to become unmanifested materially, spiritually, kal has no effect on the soul. The time doesn't... Kal ko atma par koi asar nahi hoti. Sharir par hoti hai. Atma Bhagwan ka aunsh hone ke karan, आत्मा तो अमर है, सनातन होता है, न पैदा हुआ है न मरता है, तो काल की असर कैसे पैदा होगी उस पर? भौतिक शरीर होना ही हमारा मैनिफेस्टेशन है क्या? हम तो होते ही है, यानी कि हम आत्मा हमेशा होती ही है. द सोल्स आर परपेचुअल. प्लीज कम. It's an interesting question. Manifestation and unmanifestation. We have in our experience, अपने अनुभव में, शरीर को हम प्रकट हुआ मानते हैं. जब शरीर नहीं तो हम अप्रकट हो जाते हैं. यानी कि हमारा कोई भूतकाल था ही नहीं. जो कुछ है वर्तमान ही है. भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता है क्या है? यदि हम मरने के बाद अव्यक्त हो जाते हैं तो यही एकमात्र जिंदगी है. खाओ पियो मौज करो. Eat, drink and be merry. जब पैदा हुए तभी हम अपने आप को मैनिफेस्टेड यानी व्यक्त मानते हैं. व्यक्ति यानी कि व्यक्तित्व, ये सब भौतिक मैनिफेस्टेशन पर आधार नहीं है. तो अध्यात्म में हमेशा हम सनातन अवस्था में होते हैं, तो वो सनातन मैनिफेस्टेड अवस्था के गुण तो अलग होंगे. शरीर खत्म हो जाता है, इसलिए क्या हम अव्यक्त हो जाएंगे? What will be your स्वरूप? What will be your personality? स्वरूप यानी personality. After the bodily personality finishes. Yeah, but what will be the स्वरूप? What is the स्वरूप now? That we are attached to the material body, We are attached to the products of the material body, like the family. We are attached to the product, extended product, it's called society. We are attached to the soil where we got, we born. We were born in that. So, we are attached to that particular nation. Hum log Indian hai. India ke hai, to Indian hai. But Srimad Bhagavatam tells that this attachment is illusory, temporary. Temporary manifestation. Yasyatma buddhi kunapetri dhatuke swadhi kalatradishu ijya bhaumadhi yattirtha buddhi salilena karhichit janeshu abhigyeshu sa eva gokhara. Our intelligence of thinking the manifestation, हमारा व्यक्त रूप समझने में हम सिर्फ अपने शरीर संबंधी बुद्धि ही का उपयोग करते हैं और ज्यादा कोई नहीं. जो पार्थिव बुद्धि यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लगाव में जो बुद्धि है तो वो भौतिक बुद्धि या पार्थिव बुद्धि कहलाती है, पृथ्वी वाली बुद्धि. तो इसमें स्वधि कलत्रादिशु इज्ज भौमधि, ऐसी बुद्धि यदि पत्नी पुत्र परिवार से लेकर समाज की ओर से लेकर देशभक्ति की भी बुद्धि रखें, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये धरती माता मेरी मुझे पैदा करने वाली है, मैं उसके लिए मर फिटूंगा, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी ऊपर है. तो भागवत क्या कहता है, भगवान के संबंध में ये जो भौतिक व्यक्त रूप है, दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज डिनाउंस्ड बाय श्रीमद् भागवतम. सेज इफ अवर इंटेलिजेंस इज नॉट प्योरिफाइड फ्रॉम दिस मटीरियल कंसेप्शन, देन अवर इंटेलिजेंस इज इक्विवेलेंट टू ए काउज और एन एस इज इंटेलिजेंस, गाय और गधे की बुद्धि के बराबर है. क्योंकि आत्मा के लिए तो ऐसी बुद्धि की आवश्यकता होती ही नहीं, शरीर के लिए करा करो, लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप तो आत्मा बताते हैं. तो आत्मा क्या अव्यक्त होती है? हाँ, ये चमड़ी की आंखों, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि जो पंच महाभूत के शरीर वाली जो आंखें हैं, वो आंखों से आत्मा थोड़ा दिखाई देगा. इसीलिए शरीर को व्यक्त मानना और वही एक व्यक्त हो सकता है, आत्मा अव्यक्त है, ऐसे मानना, ऐसा अनुभव नहीं करना मनुष्य की फेल्योर बताता है. कि आत्मा अव्यक्त है, यदि अव्यक्त है तो प्रभाव कैसे डालता है? हम आत्मा हैं और आत्मा शरीर में संचार करती है तब शरीर जिंदा है, जब आत्मा चली जाती है तो मृत मृत शरीर भी तो व्यक्त है ना. एट दैट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मरते समय हमारी बुद्धि गुमराह हो जाती है, वी कांट थिंक स्ट्रेट. आत्मा चला गया, हम खाली पीली रोने लगते हैं, जिंदगी भर उसके साथ लड़ते रहे, लेकिन बताने के लिए अभी देखो विरह बताते हैं झूठा. तो व्यक्त होना यानी मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये भौतिक शरीर मैनिफेस्टेशन इसलिए ही नहीं है। आत्मा अपना प्रभाव डालता है, तो प्रभाव कहां से आया? आत्मा का भी स्थान होता है, कहां लोकेटेड है? हृदय में बताई है, हृदय में बताई है, और आत्मा का स्वरूप भी बताया है, यानी कि आत्मा इज मैनिफेस्टेड। लेकिन आत्मा के गुण और शरीर के गुण बहुत विरोधी हैं। शरीर के गुण कमजोर होने के कारण आत्मा की सुपीरियरिटी महत्ता नहीं जान सकती। इसीलिए हमें बुद्धि से सोचना चाहिए कि हमें आत्मा की जानकारी के लिए है, आत्मा के लिए ही सोचना, यह हमारा सच्चा सोचना है। इसमें उसका प्रभाव का भी पता चलेगा, उसमें उसकी स्थान का भी पता चलेगा, कहां रह रहा है, और उसका व्यक्तित्व का भी पता चलेगा। और आत्मा का ऐसा व्यक्तित्व है तो परमात्मा का तो कैसा होना चाहिए, जिसका अंश है। यदि आत्मा व्यक्त है तो क्या परमात्मा को अव्यक्त मानना है? इसीलिए दसवें अध्याय में भगवान ये निराकार निर्गुणवादियों को बराबर फटकारते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धय, बेवकूफ लोग मुझे मानते हैं, जब मैं अवतार लेता हूं तो मैं अव्यक्त रूप में से व्यक्त हुआ हूं। यानी कि जैसे अपने आप को शरीर मानना, व्यक्त मानना, और आत्मा को निग्लेक्ट करना, इसी तरह भगवान जब अवतार लेता आते हैं ना, तब उनका भी अनादर करते हैं कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के शरीर लेकर आए, महान होगी आत्मा, लेकिन देखी किसने? दे विल टेल दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, यू कांट परसीव आत्मा, बट द शास्त्र सेज हाउ टू सी इट, हाउ टू विजुअलाइज इट, देयर इज द या पश्यति स पश्यति। If somebody sees according to the guidance given by the revealed scriptures where Lord Krishna himself is revealing, then he sees correctly. Otherwise, hum ye aankh hote hue andhe kehlate hain. We are blind otherwise. Avyaktam vyaktimapannam manyate maam abuddhaya. डांटना है तो ऐसे डांटो। कोई यदि कहता है अरे भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, हम तो ये सब दिखाव के करते हैं, मंदिरों में पूजा, मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या, ऐसे निरीश्वरवादी और निर्गुण तत्ववादी बोलते हैं। उनको भगवान के सामने खड़े रखो तो वो मत्था भी नहीं झुकाएगा, वो ऐसे खड़ा रहेगा। हम गुजरात में एक दादा भगवान करके एक आदमी हो गया, 1987 में वो चला गया, व्हीलचेयर में था। भगवान भी व्हीलचेयर में घूमते हैं आजकल तो। तो ये दादा भगवान ही केम इन 1986 टू न्यू वृंदावन, राइट? This Dada Bhagwan, he himself calls him God. God के दांत भी खत्म हो गए हैं, थोड़े बाकी रहे हैं, फिर भी इसमें कोई कंट्रोल नहीं, वो अचार कॉन्डिमेंट्स एंड अदर यू नो हैवी आइटम्स ही वॉन्ट्स टू ईट, यू नो इफ यू डोंट गिव हिम देन ही विल से आई वॉन्ट ईट अनलेस एंड अंटिल। ये छह प्रकार के पापड़ खाते थे। He likes six different kinds of papadams. This guy came and he was standing right in front of Radha Vrindavan Chandra. He came with his disciples, you know. And as soon as he stood before, not stood, he was in wheelchair. But he commanded his the chief follower, and she was a lady and doctor, all right, medical practitioner. He said, Niruben, pehle bhajan gao to. Niruben, sing that song. So Niruben stand. Hey Krishna tu ubho bos sujve je tara hriday ma to hu chu. Krishna, you are standing there, but you don't realize that I am sitting in your heart. Because he is calling himself Bhagavan, he is a realized person, and Krishna is a statue made up of stone. So he said, you are just standing and watching me. I am sitting in your heart. That's why. So, such an offender, you know, passed away miserably next year, you know. But such cheap God, they misunderstand the manifestation and unmanifestation of the eternal aspect. Temporary aspect, jo sharir jo kaam chalao hai, wo aata hai, jata hai, to hum dekhte hi rehte hain. Bachcha paida hua, chalo bada hua hamare samne, aur bura hota hai to shayad hum nahi rahenge dekhne ke liye, dusre to jante hain, jayega wo. To sharir ka aane jaane par hum kafi bharosa rakhte hain, lekin atma ke liye koi bharosa nahi, kyunki akal thikane nahi. Isliye gadhe aur gaay jaisi akal rakhkar hum atma ko ulta pulta mante hain, to parmatma ka to kya behal karenge. इनकी मान्यता में कितना भेद रहता है, इतने सारे झगड़े ये भगवान की मान्यता पर चले हैं. There are a lot of wars they have been fought on the religious background because misunderstanding. They say, I believe because he is unmanifested, so whatever I believe is right, and if you don't agree with me, I will kill you. So in this way we are struggling with our poor fund of knowledge, because we are not systematically taking from the authorized sources. Tab garbadi karte hain. Srila Prabhupada gave us authorized sources and showed us by his example that how one can make his life perfect towards the march of going back home, back to Godhead. Starting from chanting Hare Krishna and take the holy name while you are going, so it may remain continued for ever, 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 till you reach back home. So, Krishna is accompanying us through his holy name, throughout our journey. He never rejects. Jo naam lena band karta hai, to naam bhi uska picha bhi nahi chhodta. Usko aise hi pareshani mein dalta hai ki jabardasti se naam lena hi padta hai. Jaise jabardasti se sharir dharan hi karna padta hai. To ye jabardasti bhautik duniya ki mahamaya ki hai. ये जबरदस्ती दुर्गा देवी की है, शरीर जबरदस्ती से लेना, शरीर की पीड़ाओं में से पसार होना, ये दुर्गा देवी की कृपा है. लेकिन ये गलती से हमने ये शरीर धारण किया है, तब वो कृपा समझना चाहिए कि छूटना है. यदि छूटने की जब हम आशा नहीं रखते हैं, तो दुर्गा देवी कि पास जाएंगे, मनाएंगे, मुझे ये दे दो, ये दे दो, आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, वो करूंगा. लेकिन दुर्गा देवी तो जानती है भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है. शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कृष्णा, सो शी इज नॉट गोइंग टू बी अपीज्ड दैट इजिली अनलेस यू आर रेडी टू गो बैक टू योर फादर कृष्णा. And she will make sure पीड़ती ही रहेगी पीड़ती ही रहेगी, इसलिए ओ मारे तो करना बंद हो जाएगा क्योंकि माँ ही पीड़ती है ओ बाप रे करना पड़ेगा तो चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग विद मम्मी को याद कर, लेकिन जब बड़ा होता है तो बाप रे बोलने लगता है सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल स्वरूप, जो प्रकट स्वरूप है, तब भगवान के अंश होने के नाते जब भगवान प्रकट है हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कृष्णा इज देयर, डू यू एग्री विथ कृष्णा, हाउ मच इज ही देयर समवेयर, हाउ कैन यू से व्हाट्स द प्रूफ प्रयाग, हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज देयर एवरीवेयर, हाउ कैन यू से, डू यू हैव अ प्रूफ,
He made everything?
Krishna made everything. Yes, made everything means what?
He gives everything.
What is everything?
Love.
Give me an example of everything.
Love.
Soccer ball. Soccer ball. Krishna was playing soccer? House, everything.
Legs.
The man is making from the material Krishna made. But he is right. What he means in our terms, that when Krishna's energies are manifested, when the energies are manifested, then we can see that there must be energetic behind it. When energies are manifested, भगवान की शक्तियों का प्रकट होना हमारे लिए भगवान की भगवान का प्रमाण बताती है, प्रूफ बताती है. Unless and until the energies of the Lord are manifested, we will have no knowledge of Who is he? Why he is? पर हम पैदा होते पहले वो पैदा हो गई है, तो भगवान ने उसे पैदा किया. हम तो मनुष्य जन्म में पैदा होते ही कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पशु जन्म में तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं जानने की. तो जब हम पैदा हुए तो हमारे लिए खाना पीना सब कुछ तैयार था, हवा भी थी कि जैसे श्वास ले, खुद में श्वास लेने की ताकत नहीं थी तो जबरदस्ती से पिटाई करके रुलाना पड़ता था तो फेफड़े खुल जाते थे. कहने का मतलब है कि ऑल दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णास एनर्जी. इट मे बी इन्फीरियर एनर्जी, देर इज सुपीरियर एनर्जी, but we are the marginal energy, we are fixed between the two. By quality we are superior energy, therefore we have access to know the inferior energy and superior energy. Hum dono paksh mein, kabhi bahut dukh aa jate hain to bhagwan ke samne rone jate hain, jab dukh khatam kam hote hain to turant hum भौतिकता में पड़ जाते हैं. तो जो भौतिक शक्ति है और आध्यात्मिक शक्ति, दोनों शक्ति का हम उपयोग करना चाहते हैं. तो जब दोनों शक्ति का प्रकटीकरण तो होना ही चाहिए, आत्मा आध्यात्मिक शक्ति का अंश है, तो आध्यात्मिक शक्ति जब प्रकट होती है तो हमारी भौतिक बुद्धि से, भौतिक इंद्रियों से हम पहचान नहीं पाते. When the spiritual energies are manifested, we cannot understand through our material senses. But regardless, they have been manifested. कौन उदाहरण है? Any example for spiritual energies manifested? He is the supreme personality of God. He is not energy. He is energetic. He is also energetic, empowered personality.
Living entities, living beings.
No, only spiritual energy. They are marginal.
Oh.
Only spiritual manifestation of spiritual energies. नहीं तो वो तो उसे कहा, पर ही इज एम्पावर्ड. भगवान की शक्ति का आविर्भाव है प्रभुपाद जी में, शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं. मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी. उदाहरण
राधे,
वाह, भगवान का नाम, भगवान का नाम. इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल एनर्जी. जो स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिफेस्टेशन आर भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की पैराफर्नेलिया, दिस आर ऑल स्पिरिचुअली पोटेंट. स्पिरिचुअली पोटेंट मीन्स पोटेंसी, मीन्स एनर्जीज आर देयर. And they are manifested. Bhagwan ke avatar ityadi, these are also alag alag prakar ke avatar hai. These are the manifestation of the opulences of the spiritual nature. Usse chid vaibhav kehte hai. Chid vaibhav. Vaibhav means opulence. Chid means those who are conscious. Consciousness in the jiva is the spiritual energy. But we are not totally conscious. We tend to forget. हम लोग भूल जाते हैं. हमारी चेतना का इतना विकास नहीं होता. बार बार कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, फिर भी नहीं करना चाहते तो कैसे होगा? चेतना का विकास करने के लिए ये चेतना का प्रगटीकरण हरे कृष्ण महामंत्र में, और वो वहां तक हमें रियलाइज कराता है, क्योंकि यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देख सकते हैं. प्रभुपाद जी कहते कि जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, भगवान कृष्ण उसकी जीभ पर नाचते हैं. यानी कि हम तो सिर्फ भगवान का नाम बोलते हैं, लेकिन नाम और नामधारी जो भगवान है उसमें अंतर न होने के कारण जिनकी आध्यात्मिक नजर बहुत विकास कर चुकी है, डेवलप हो चुकी है, दे विल सी कृष्ण फेस टू फेस डांसिंग ऑन द टांग. तो यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, यानी कि जब भगवान का नाम लेता है उनको ही स्वरूप का पता चलता है, सच्चा स्वरूप क्या है. जो नाम नहीं लेता है तो उसे प्रकट नहीं होता, तो वो भगवान की सीधी पूजा भी नहीं कर सकता. ही विल नॉट बी एबल टू वर्शिप द पर्सनालिटी एस्पेक्ट इफ ही इज नॉट टेकिंग द होली नेम. नाम की शक्ति इतनी बड़ी बताई है, भगवान का स्वरूप बाद में आता है. जो नाम और स्वरूप दोनों की सेवा करता है तो उसे भगवान के आध्यात्मिक गुण का पता चलता है, क्योंकि वही आध्यात्मिक गुण वो अंश होने के कारण वो उनके प्रकट होते हैं. जो भगवान की नाम सेवा, स्वरूप सेवा और गुणों द्वारा अपने व्यवहार में लाकर वैष्णव एडिकेट के अनुसार व्यवहार करता है तो भगवान की लीला में प्रवेश करने का उसका अधिकार बनता है, वो समझ पाएगा, प्रकट होगी लीलाएं। नाम रूप गुण लीला, ये चार मैनिफेस्टेशन है, ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव यानी कि मैनिफेस्टेशन। सो अनलेस एंड अनटिल दिस मैनिफेस्टेशन इज देयर, यू विल नॉट नो व्हाट इज द पर्सनालिटी। भगवान श्री कृष्ण का ये श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम जो इट्स अ स्वरूप, द ओरिजिनल फॉर्म, टू हैंडेड बट बेंट इन थ्री डिफरेंट कर्व्स, सो दैट इज द ओरिजिनल स्वरूप एंड इट हैज टू बी वर्शिप्ड। वी आर नॉट आइडल वर्शिपर्स, idolatry is not our process, so हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, ये फालतू विग्रह नहीं है जो अपने आध्यात्मिक संवेदनाओं की आप ले कर सकता है, तो यानी कि उसमें आध्यात्मिक संवेदना का संचार करने की भी शक्ति होती है, भगवान के प्रति जो भावना होती है तो वो आध्यात्मिक स्तर पे होनी चाहिए, दैहिक स्तर पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए भगवान के सामने रोना धोना अपराध माना जाता है, शास्त्र में मना किया है, नहीं तो हम भगवान को भी अपने जैसे स्थूल भौतिक स्वरूप वाले मान लेते हैं। तो व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, अव्यक्त कभी होते ही नहीं, भगवान कभी अव्यक्त होते नहीं, क्योंकि इनकी आध्यात्मिक शक्ति तो व्यक्त है, भौतिक शक्ति भी इनकी है वो भी व्यक्त है, तो उनको अव्यक्त कहने की क्या आवश्यकता हुई, जो वो मानता है वो बेवकूफ है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय, बेवकूफ लोग ही मुझे अव्यक्त में से व्यक्त हुआ हूं ऐसा मानते हैं। तो सारा जगत ये अव्यक्तवादी है, क्योंकि जब भगवान होंगे पहले तो दिखाई नहीं देते, तो होने की आवश्यकता भी नहीं मानते, ये नास्तिक बने हुए लोग अपनी इंद्रियों को बहकाने के लिए भगवान या रिलीजियस सेंटिमेंट को वो अवरोध मानते हैं, दे आर ऑब्स्टेकल्स, दिस रिलीजियस पीपल आर ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ देयर अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो दे ऑब्जेक्ट एंड दे वॉन्ट टू इरेडिकेट एनीथिंग विच इज imposed upon them under the religious guise. So they go to the court even. And court, you know, has approved that you should not have prayers in the schools. You know, it jeopardizes the amendment right. It violates the right of the first amendment. Or yadyadacharati shrestha, when America is establishing this rule, everybody follows. But the point is that it is very, very emphatically, you know, proven by the great acharyas. So we pay full trust on them. And that's why our belief system is coming. Oh, I have Shraddha, that it must be right anyway. But let me try to do the way I think the best for me. Again, it's a compromise. let me follow what he has said. If I have trust, full trust on them, then I must follow. जब गुरुजनों पर विश्वास रखते हैं तो हमें वो आदर के साथ उनका पालन भी करना चाहिए, इनके आदर आदेशों का पालन करना चाहिए. सिर्फ विश्वास रखने से फायदा नहीं, अपना विकास करने में हमें सर्वप्रथम गुरुजन ये बताते हैं कि भैया हरे कृष्णा महामंत्र जपो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, घास का घोटाला भी नहीं कर पाओगे. कोई चारा नहीं यानी के नो सस्टेनेंस, चारों खाओ एटले सस्टेन, कोई चारा नहीं है यानी के खाने की कोई आवश्यक चीज है ही नहीं इसके अलावा. सो भगवद गीता डिस्पेल्स ऑल अवर इग्नोरेंस. सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू हैव व्हाट बोलो.
What happens when this unmanifestation of this material universe and the people, the souls who leave this body, when they are in...
They are suspended in their subtle bodies, not in their original soul body, because they are not liberated, right?
Yeah, yeah.
So they are eternally conditioned. When eternally conditioned living entity gives up the gross body in dissolution, the subtle body which is covering with mind, intelligence and ego is suspended, that it cannot be given another body till the new set of creation will begin. And that Brahma has to do. So where these guys are going to be? It's very funny. You know, when it's explained in third count of Srimad Bhagavatam that when Brahma was born in ignorance himself, he did not know who he was because everything was dark. He did not know that he was sitting on a lotus flower. You know, he tried to check out everything by his external senses, but he could not find himself because it was pitch dark, no light. So he was searching and he came to the center of the lotus. So he also entered into the nal, means the tube, the cord, what they call, umbilical cord. And went into the nabhi section of Mahavishnu. But it was so immense, he got frustrated and came back. Right? Then, Mahavishnu, seeing the frustration of Brahma, became little bit compassionate. And he sounded tapa, 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 three times. Means, do the austerity. So, Brahma got some inclination that I heard this sound before. And that started a reaction within his memory and emerging out the previous memory. So, he was enthused, he became enthused to do the tapa. He said, Brahma did austerity for 100 celestial years. Then he started realizing the whole set of his activity that he did in previous millennium. So Brahma became effulgent. By realization means he became effulgent. So he got, a shadow. When Brahma became effulgent, the rest is his shadow. So, those who were attracted by Brahma's effulgence, these living entities in their suspended state, they were there. So Brahma was pleased, all right, I will give you your suitable bodies. But those who were in the shadow, this shadow created a kind of vacuum in them, a sort of the feeling of want. All right? And they want to get it. They want, immediately they wanted, but they had nothing except their suspended state of existence. But still, in suspended state of existence, they wanted to, fulfill their cravings of want. So they saw the shadow is coming from Brahma. He said, there who is, he is the cause of our dissatisfaction. He must provide us. So kill him. And other living entities, they say, okay, don't spare him. Because there is nobody else besides him for us. So don't spare him. And others say, kill him. So those who said, kill him, they became yakshas. And those who said, don't spare him, they became rakshasas. So yaksha and rakshas are created from the shadow of Brahma. The first thing Brahma said to them, don't kill me, don't kill me, I'm your father. I will provide you too. Just like I'm ready to provide the others, I will provide you too. So these two different natures, Daiva, Asura, were created. And Brahma said, okay, here they are. So let's give them stomachs. So they will fulfill their desire. Because they were ignorant. They are suspended and to fulfill their desire. So all the living entities have the craving for eating, sleeping, mating and defending. They are all born out of ignorance. And especially, the stomach was provided to fulfill all. Aren't we living for the sake of puppy stomach? Because when it demands, you can't wait. You have to eat, you have to eat. You have to empty, you have to empty. This is forced upon. So Brahma gave stomach to everyone. Even a single cell, amoeba, has the proclivity of eating, and he does. But stomach means the place where you can satisfy your hunger, thirst, the vacuum that you were feeling. For sustenance. Otherwise they were going to eat Brahma himself. Like that. So in this way we see, when a human body gets a stomach, his stomach is hanging than the animal's body. So human body, who stood on 2 feet, his stomach became upside down, means more, hungry, more thirsty. The animals, they don't violate the nature's law. Right? So they are quadruped and their stomachs are horizontal to the surface of the earth. Means they are good, non-violent. and nature provides them, nature maintains, and they live without much disturbance to the nature. But this guy, the human being, he stood on his two legs, so his stomach became upside down, hanging. You want to try? How is this puppy stomach working? Okay, put a big bag of rice outside. The birds will come and take few grains and go away. But send a man. He will take the whole bag away and still he will not be happy. Right? So like that. You know, he is very, very greedy. For greed means for the urge of puppy stomach we do anything and everything. Even we take toll of our own body because we can't satisfy the urge of stomach. Pet karave vet. So, it's good that we are eating prasadam and no nonsense. So we remember this all the time. Otherwise, you know, we are in trouble, big trouble. So, that the point is that all this thing is avoided by Brahma. Otherwise, on the onset of creation, every living entity is in suspended state. So, wherever they have left for that desire, they get an appropriate body by Brahma. You follow my point? So the manifestation of the body is given through the Prajapatis, you know, and they all manifest, all the living entities. And Darwin is wrong there. You know. Yes.
Who's controlling us? Who's Maragi? Who's controlling us?
Who is controlling us?
Who is controlling us?
Yeah.
How much can you control yourself?
99%.
Not enough?
99%.
You are not controlling yourself 99 even. You cannot control even 50-50. You control little bit.
You try.
Who is controlling your heart? Who is controlling your lungs? Who is controlling your stomach?
Krishna.
Even you cannot digest your own food. Krishna has to come and stay as Vaishvana and become a fire of digestion. And then your food will be broken down and then the blood will suck it up and then you will become big. Unless and until Krishna digests our food, He provides all the mechanism. So who controls most of? Yes, and his energies are controlling us. If you want to lift up your hand, you will. That is your control. If you want to put down your hand, that is your control, you know. But tell your heart, come out. He says, no. Right? Okay, heart, stop functioning. He says, no. Can you control your sleep even?
No.
You have to go to sleep. It is time, right? It's time, right? How long can you sit here?
20 minutes.
Can you control forever? Now then, you're getting tired. Probably your hips will start swelling. Can you control your speaking urge?
Was this for me?
Urge of speaking? Can you control your urge of taste?
No, not really.
You want. Yeah. If there is less salt, I will ask, okay, give me more salt. I can control. No, I cannot control. Can you control your crying when you feel crying? So how much you are in control?
One.
Only one. Good. Because our bodies are made up of Krishna's energy. And this Krishna's energy is called Prakriti. So all the works are done according to her desire and we are simply puppet in the hand.
So that means Jebukan's got the energy, Jebukan gives it to the sun, then the sun gives it to us.
Yeah. Have you seen a puppet?
Pardon?
Have you seen a doll which is tied with a string and you can put your finger and make it?
Oh, yeah.
Yeah, that is puppet. So we are all puppets in the hand of Krishna's energy called Maya. So she is the real controller. But we think we are the doer. Even though we are being controlled by them, we think we are the doer.
Because I forget, Jebukan used to like get a Game Boy, put our chip in as we play, and then he like controls us.
That's not. Playing is not coming under control. Playing comes under the sweet desire of Lord Krishna, and he will be controlled by those who love him. That's a different kind of control. But in this material world, as for example, when you are feeling good to sleep, you are controlled by the mode of ignorance of Maya. Oh. Ignorance means you have to forget. When you go to sleep, you forget so many things, right? You too forget. Yeah. So that is, but we think we are somebody, we know everything. No, that is foolishness. Even though we are being controlled by something and we think we are the controller.
Thank you, Maharaj. In the Sri Shubnishad, there was description of Suras and Asuras. And then there's this Atmaha, the person who doesn't do what's required. So, does it mean that the Asuras have another planet, or is it actually in?
Isn't it this a big world? We have a lot of Asuras. They are manifesting as desires, Asuric vrittis. So Asuras are everywhere, and the demigods are also everywhere. And they are all residing with us. So if we try to introspect, see within us, and if we find that, yes, if you identify some of the desires are asuric, and you have been harboring for a long time, better call on Lord Narsingadev and tell and request him to kick them out. Or tear them apart. and he will do it. Because he is our Lord and Master, and he knows that you are voluntarily recognizing it, all the asuras, and identifying and bringing before him to finish them. And Nityadeva has a business to tear them apart. Right? So that is the prayer, and the mood should be cultivated by introspection. Why? Why do you want to kill the asuras within your own mind?
They're affecting our ability to associate, to understand.
So you will become fearless. You will become fearless in the struggle for existence. If you are fearful, how can you serve Krishna?
Shadow of Brahma, so they are the ones who got into this particular system or the planet, the earth.
They are everywhere too. Yep. Because jivas go everywhere. The asuric jivas also go everywhere. And demigods are also going. So in the formation of the human body, just like the formation of Virata Rupa is explained, that these living entities, the demigods, generally they take the charge of functionalities of all these organs. Because they are the controller for manifestation, sustenance. They are the one to destroy. The demons are going to destroy. Right? But for manifestation, the demigods will take the charge of functionalities. For example, when the nose, the nostrils are formed, Ashwini Kumar is going. Ashwini Kumar manifests later on, but an unmanifested form, they do the functionality of breathing. Right? So in the same way, when the mouth of the Lord is formed, they said, Agni Dev took the charge of the functionality of So, each and every organ of our body is controlled by the demigod. They are the controllers. Demons want to interfere. This cancer is a demon. Is it not? The disease, the negative impact, or the one who interferes in the life systems, they are demoniac nature.